कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ करने गया। जब वो दुआ कर रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफेद बुर्राक हो गई, और देखो दो शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलम में वाकई होने को था। मगर पतरस और उसके साथी नींद में भरे थे, और जब अच्छी तरह बेदार हुए तो उसके जलाल को और उन दो शख्सों को देखा जो उसके साथ खड़े थे। जब वो उससे जुदा होने लगे तो ऐसा हुआ कि पतरस ने यीशु से कहा,
ऐ साहिब, हमारा यहाँ रहना अच्छा है, बस हम तीन डेरे बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए।
लेकिन वो जानता ना था कि क्या कहता है। वो ये कहता ही था कि बादल ने आकर उन पर साया कर लिया, और जब वो बादल में घिरने लगे तो डर गए, और बादल में से एक आवाज आई,
ये मेरा पसंदीदा बेटा है, इसकी सुनो।
ये आवाज आते ही यीशु अकेला पाया गया और वो चुप रहे, और जो बातें देखी थी उन दिनों में किसी को उनकी कुछ खबर न दी। दूसरे दिन जब वो पहाड़ से उतरे थे तो ऐसा हुआ कि एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली, और देखो एक आदमी ने भीड़ में से चिल्ला कर कहा,
अरे उस्ताद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मेरे बेटे पर नजर कर, क्योंकि वो मेरा इकलौता है, और देखो उसे एक रूप पकड़ लेती है और वो एकाएक चीख उठता है और उसको ऐसा मरोड़ती है कि कब भर लाता है, और उसको कुचल कर मुश्किल से छोड़ती है। और मैं तेरे शागिर्दों की मिन्नत की कि उसे निकाल दे, लेकिन वो ना निकाल सके।
यीशु ने जवाब में कहा,
ऐ बेएतिकाद और कजरो कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? अपने बेटे को यहाँ ले आ।
वो आता ही था कि बदरूह ने उसे पटक कर मरोड़ा, और यीशु ने उस नापाक रूह को झिड़का और लड़के को अच्छा करके उसके बाप को दे दिया, और सब लोग खुदा की शान को देखकर हैरान हुए। लेकिन जिस वक्त सब लोग उन सब कामों पर जो वो करता था ताजुब कर रहे थे, उसने अपने शागिर्दों से कहा,
तुम्हारे कानों में ये बातें पड़ी रहीं, क्योंकि इब्ने आदम आदमियों के हाथों में हवाले किए जाने को है।
लेकिन वो इस बात को समझते न थे, बल्कि ये उनसे छिपाई गई ताकि उसे मालूम ना करें, और इस बात की बाबत उससे पूछते हुए डरते थे। फिर उनमें यह बहस शुरू हुई कि हम में से बड़ा कौन है। लेकिन यीशु ने उनके दिलों का ख्याल मालूम करके एक बच्चे को लिया और अपने पास खड़ा करके उनसे कहा,
जो कोई इस बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है, क्योंकि तुम में जो सबसे छोटा है वही बड़ा है।
यूहन्ना ने जवाब में कहा,
ऐ साहिब, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहें निकालते देखा और उसको मना करने लगे, क्योंकि वो हमारे साथ तेरी पैरवी नहीं करता।
लेकिन यीशु ने उससे कहा,
उसे मना न करना, क्योंकि जो तुम्हारे खिलाफ नहीं वो तुम्हारी तरफ है।
जब वो दिन नजदीक आए कि वो ऊपर उठाया जाए तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को कमर बांधी और अपने आगे खासिद भेजे। वो जाकर सामरियों के एक गांव में दाखिल हुए ताकि उसके लिए तैयारी करें, लेकिन उन्होंने उसको टिकने ना दिया क्योंकि उसका रुख यरूशलेम की तरफ था। ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा,
अय खुदावन, क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दें कि आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें भस्म कर दे, जैसा एलिया ने किया?
मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का और कहा,
तुम नहीं जानते कि तुम किस रूह के हो, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया।
फिर वो किसी और गांव में चले गए। जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा,
जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा।
यीशु ने उससे कहा,
लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं।
फिर उसने दूसरे से कहा,
मेरे पीछे चल।
उसने कहा,
आए खुदावन, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करूं।
उसने उससे कहा,
मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला।
एक और ने भी कहा,
ऐ खुदावंद, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हुआ।
यीशु ने उससे कहा,
जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं।